समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार श्रोताओं, आपका स्वागत है न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा में, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, आपको लेकर चलेंगे देश की परिक्रमा पर भी और जानेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से कि उनके पास हमारे लिए क्या खास जानकारी है। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और उन खास हस्तियों को भी हम याद करेंगे जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिवस है। श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं सरफिरोजी और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी अभिषेक मुखोपाध्याय। अभिषेक, आपको भी नमस्कार।
हेलो सरफिरोजी, हेलो एंड गुड आफ्टरनून। यू आर ट्यून्ड टू परिक्रमा ऑन 100.1 एफएम। आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय एंड विद मी टुडे इज माय को-होस्ट सरफिरोजी। एंड फॉर यू वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज एंड डिस्कशन सेगमेंट, डेटलाइन इंडिया, रिपोर्ट्स, कैप्सूल्स, बिजनेस ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर। ऑल दीज ओवर द नेक्स्ट 30 मिनट्स। वी बिगिन विद द न्यूज हेडलाइंस फर्स्ट। Indian Armed Forces thwart all attempts by Pakistan targeting northern and western cities. Air defense units successfully intercept and block all missiles and drones from Pakistan.
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ परिचालन तैयारियों की समीक्षा की। सरकार ने सभी मीडिया चैनलों और डिजिटल प्लेटफॉर्म को रक्षा अभियानों तथा सुरक्षा बलों की गतिविधियों की लाइव कवरेज न करने को कहा।
Railways run special trains from Jammu and Udhampur for New Delhi.
और पाकिस्तान सरकार ने भारी नुकसान के बाद अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों से और अधिक ऋण देने की अपील की।
And now, listeners, it's time for the segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about fake information doing the rounds and alert our listeners regarding their authenticity. After India's retaliatory strikes, a seemingly nervous Pakistan has resorted to spreading fake news and misinformation in digital space.
पाकिस्तान सैन्य जीत की कहानियां गढ़ रहा है, जो मीडिया को गुमराह करने, वैश्विक आख्यान को विकृत करने और जनता की धारणा में हेर फेर करने के उसके जानबूझकर किए गए प्रयास को दर्शाता है।
Here is a report from a correspondent about how Pakistan is peddling propaganda on social media platforms.
Despite facing repeated setbacks and international embarrassment, Pakistan refuses to abandon its malicious agenda, and now it has taken the route of digital space to mislead the world and spread fake news. Through fake videos and photographs, Islamabad using deceitful tactics in a futile attempt to malign India. A fake video is being circulated by desperate Pakistan, claiming that its army destroyed an Indian post at LOC of 20 Raj Battalion, which does not even exist. Another laughable claim being made by Islamabad that it made explosions at Jammu Air Force Base by sharing an old picture of explosion at Kabul Airport in 2021. One more example of Pakistan's nefarious design in digital space related to its claim on attack to Gujarat's Hazira port. This old video is also of an oil tanker explosion. These repeated attempts at deception not only fail to mislead but further expose the desperation and lack of credibility in Pakistan's propaganda efforts. Pakistan is claiming that its missile has hit India's air defense system by sharing an image of a fire at a military site in Moscow, which took place in 2023. Another laughable attempt one can see is where an old video from Indonesia is being shared to claim an attack on Indian military colony. Similarly, an image is being circulated from the Ukraine-Russia conflict as Pakistan army intercepting a UAV drone. All these show that a nervous Islamabad is trying hard to shift the focus from its nefarious design to protect terrorists and control the narrative with a barrage of lies and digital theatrics. Saklayan Akhtar for Akashwani News, Delhi.
Now here's another report from a correspondent which mentions the blatant lies being spread by Pakistan on social media.
Desperate Pakistan has shared a video claiming drone attack in Jalandhar on social media, which is an unrelated video of a farm fire. Laughably, it is also surfacing a video of an explosive attack that took place in Lebanon in 2020. This is an attempt to claim that Pakistan has launched a missile attack on India in retaliation. One more false claim is related to Ambala Air Base is surfacing online, where Islamabad notoriously claimed that the Indian military used Ambala Air Base to attack Amritsar and its own citizens. Akshit Vaidyan, Akashwani News, Delhi.
और अभिषेक, जिस तरह पाकिस्तान सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार कर रहा है, ऐसे में इस महत्वपूर्ण समय में हर एक सूचना की सावधानी पूर्वक जांच करना बहुत जरूरी है।
एब्सोल्युटली, एंड इफ यू एनकाउंटर ड्यूबियस कंटेंट स्पेशली कंसर्निंग द इंडियन आर्म फोर्सेस और एनी इन्फो रिलेटेड टू ऑनगोइंग सिचुएशन, यू मस्ट रिपोर्ट इट टू पीआईबी फैक्ट चेक। यू कैन ऑल्सो शेयर सच कॉन्टेंट ऑन व्हाट्सएप नंबर 8799711259 and email ID socialmedia@pib.gov.in।
और अभिषेक, हम सभी जानते हैं कि सरकार देश में आवश्यक प्रणालियों और सेवाओं के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित हाल के घटनाक्रमों के मद्देनजर राष्ट्रीय तैयारियों और अंतर मंत्रालय समन्वय के लिए विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा कई कदम उठाए जा रहे हैं। हमारे संवाददाता इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे और तैयारियों को लेकर अपने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इसी तरह की एक बैठक केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन की अध्यक्षता में बैंकों और वित्तीय संस्थानों के साइबर सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा के लिए आज शाम होने जा रही है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने कहा है कि एटीएम, नकद जमा और निकासी मशीनों के साथ साथ सभी डिजिटल सेवाएं पूरी तरह से चालू हैं। बैंकों ने ग्राहकों को अफवाहों पर ध्यान न देने की सलाह दी है। इस बीच इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने कहा है कि देश भर में पर्याप्त ईंधन भंडार है और आपूर्ति लाइनें सुचारू रूप से चल रही हैं। इंडियन ऑयल ने लोगों से घबराहट में ईंधन की खरीद के लिए पेट्रोल पंप पर अनावश्यक भीड़ से बचने को कहा है। पीटीओ पर लगाए गए एयर रेड सायरन का परीक्षण करेगा, जो 15 से 20 मिनट की अवधि के लिए होगा। इस दौरान लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है। आनंद कुमार के साथ दिवाकर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
श्रोताओं, परिक्रमा कार्यक्रम में अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास चलने का और जानेंगे कि उनके पास क्या खास है। सबसे पहले बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश की, जहां रसायन मुक्त खाद्य पदार्थों की उपलब्धता को बढ़ाने और किसानों को प्राकृतिक खेती की ओर प्रेरित करने के लिए राज्य सरकार विशेष प्रयास कर रही है। प्रदेश भर में प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के माध्यम से किसानों को रसायन मुक्त खेती की ओर प्रेरित किया जा रहा है। साथ ही प्रदेश सरकार ने इस पद्धति के तहत उगाई गई फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य भी निर्धारित किया है।
प्राकृतिक खेती एक रसायन मुक्त खेती प्रणाली है, जिसमें पर्यावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए कम लागत में अधिक उत्पादन पर बल दिया जाता है। साथ ही इससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है और स्वस्थ फसलों की पैदावार होती है। हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के तहत रसायन मुक्त खेती के प्रति किसानों की रुचि बढ़ रही है और चंबा जिला के जनजातीय क्षेत्र पांगी को राज्य का पहला प्राकृतिक खेती उपमंडल घोषित किया गया है। इस क्षेत्र में अब रसायनों से युक्त खेती नहीं की जाएगी और यहां उगाई जाने वाली सभी फसलों के लिए प्राकृतिक खेती को अपनाया जाएगा। वहीं मंडी जिला के जोगिंदरनगर के कधार गांव भी प्राकृतिक खेती का आदर्श गांव बनकर उभरा है। यहां बीते कुछ वर्षों से प्राकृतिक खेती पद्धति को अपनाया जा रहा है। शुरुआत में यहां की महिलाओं ने प्राकृतिक खेती की विधि को सीखा, जिससे प्रभावित होकर पूरे गांव ने यही खेती प्रणाली अपनाई है और अच्छे परिणाम प्राप्त किए हैं। ग्रामीणों के अनुसार यहां 8 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर अब गेहूं, जौ, मक्की, मटर, आलू, सोयाबीन, राजमा और कोदरा यानी रागी जैसी पारंपरिक फसलों की खेती प्राकृतिक विधि द्वारा की जा रही है। ये खेती कम खर्च वाली है, क्योंकि इसके लिए गाय का गोबर और गोमूत्र मुख्य घटक है। इस पद्धति को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने राज्य में प्राकृतिक पद्धति से तैयार की गई फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि भी की है, जिससे किसान प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए प्रोत्साहित हो रहे हैं। निश्चित तौर पर प्राकृतिक खेती पद्धति से जहां किसानों व बागवानों की आर्थिकी मजबूत होगी, वहीं इस पद्धति से उगाए गए उत्पाद के लिए भी लाभदायक होंगे। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी शिमला से मैं रितेश कपूर।
अभिषेक, अगर कोई भी युवा पोस्ट ग्रेजुएशन की 2-2 डिग्रियां प्राप्त करे तो बहुत ही आम बात होगी कि वो किसी बड़ी कंपनी में या शिक्षा संस्थान में नौकरी करे, लेकिन पैठन तहसील के एक युवा यज्ञेश कादबने ने इसी परंपरागत सोच के विपरीत जाते हुए खेती संभालने का निर्णय लिया है। हमारे संवाददाता और अधिक जानकारी दे रहे हैं इस पर।
आज वे अपनी खेती से अनाज के साथ साथ कई तरह के फलों की उपज लेते हैं। इन ऑर्गेनिक फलों की आसपास के मार्केट में बड़ी मांग है। यज्ञेश केवल यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने अपने खेत में इको जोन बनाया है। इसके बारे में वे बताते हैं।
मैंने मेरे खेत में इको जोन करने का निर्णय लिया था। उसमें अमरूद, जामुन, बेल जैसे अनेक भारतीय संस्कृति द्वारा निर्मित जो वृक्ष है, उसकी लागवड़ मैंने अपने खेत में की और एक एकड़ का इको जोन बनाया है। जो साइड में जो अपने बांध रहे थे, उसके ऊपर करवन, नारियल, सागवान, जामुन, अमरूद ऐसे पौधे लगाए। इसके वजह से जो हमारे पर्यावरण का समतुल्य वो अच्छे तरह से बना रहता है। उससे वजह से खेती करने में ज्यादा फायदा मिलता है। इसके वजह से पर्यावरण समतल से जो आपकी भू संपदा है उसका भी जो आरोग्य है वो अच्छा रहता है। इको जोन में जो पौधे के पत्ते गिरते हैं उसका भी कंपोस्ट हम बना के सब खेत में डालकर उससे खेती करते हैं, और जो नीम के निमार्क बना के उसकी छिड़काव करके जो हमारे ग्राहक बन चुके हैं जैसे फलों के मौसमी अनार के आम के वो खुद आकर हमसे वो माल लेकर जाते हैं। कीटनाशक रासायनिक औषध रहते हैं वो इस्तेमाल करने से क्या क्या दुष्परिणाम मिलते हैं वो ग्राहक को समझ में आने की वजह से वो अच्छे तरह से हमारे पास से ही सब लेकर जाते हैं और हमको भी उससे ज्यादा मुनाफा मिल रहा है। मेरे पास जो गोधन है तो सब अपना देसी भारतीय आठ गौ माता है उसका जो गोबर है वो गोमूत्र है उसका छिड़काव अपने बगीचे के ऊपर भी करते और उसको जो चारा लगता उसके लिए एक एक अलग से जगह हमने रखी उधर से हम घास दशरथ घास और जो गिन्नी गवत रहता वो उनको देते हैं। परम पूज्य पांडुरंग शास्त्री अठोले जो अपने एथियस्ट फिलोसोफर तत्व चिंतक रहे भारत के उनके संस्था में मेरी पढ़ाई हुई उधर से मैंने कृषि और कृषि का जो अभ्यासक्रम रहता वो रेगुलर तरीके से उधर से मैंने प्रैक्टिकल भी उधर काम किया मेरे को उसमें ही रुचि थी मैंने वही किसानों को जो लगता वही उसमें काम करने का ठान लिया। मेरा डिसीजन अभी मुझे लगता है जो सही है जो अपना केंद्र शासन है उन्होंने भी अभी नेचुरल मिशन ऑफ नेचुरल फार्मिंग बोल के एक नई स्कीम हमारे सरकार ने अभी लाई है तो इसकी वजह से ऐसा लगता है कि जो मैंने पहले सपना देखा था वो सपना अभी सच में साकार होता है दिखाई दे रहा है। भारत शासन की जो अलग अलग स्कीम है भावसाहब कुंसर योजना है हमारे जैस योजना है ड्रिप सिंचाई की जो योजना है उसका गवर्नमेंट से सब्सिडी लेकर भी उसका सही इस्तेमाल मैंने खेतों पे किया है।
यज्ञेश की राह पर चलकर हर किसान अपनी आमदनी तो बढ़ा ही लेगा साथ ही पर्यावरण का संतुलन भी बना रहेगा। परिक्रमा के लिए छत्रपति संभाजीनगर से मैं हर्षवर्धन दीक्षित।
सीमावर्ती कच्छ जिले में नागरिक सुरक्षा विभाग ने एक अनोखी पहल की है। यहां दिव्यांग जनों के लिए नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण का विशेष मॉड्यूल तैयार किया गया है जो ब्रेल लिपि में उपलब्ध होगा। सुनते हैं भुज से हमारे संवाददाता की ये खास रिपोर्ट।
युद्ध आगजनी भूकंप चक्रवात भारी बारिश आदि जैसी मानव निर्मित और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान नागरिक सुरक्षा का प्रशिक्षण अत्यधिक लाभदायी होता है। सभी को संरक्षण और आपदा प्रबंधन में प्रशिक्षण मिले और कोई भी व्यक्ति शारीरिक अक्षमता के कारण इससे वंचित न रहे यह सुनिश्चित करने के अपने प्रयासों के तहत सीमावर्ती कच्छ के नागरिक सुरक्षा विभाग ने दिव्यांगजनों के लिए पहली बार नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण के मॉड्यूल को ब्रेल लिपि के रूप में विकसित और अनुवादित करने की अनोखी पहल शुरू की है। दिव्यांगों के लिए कार्यरत संस्था नवचेतन अंधजन मंडल की सहायता से तैयार किए गए इस मॉड्यूल में नागरिक सुरक्षा बल प्राथमिक चिकित्सा अग्नि और सुरक्षा के साथ साथ आपातकालीन हेल्पलाइन और अभयम महिला हेल्पलाइन के बारे में जानकारी शामिल है। कच्छ के जिला कलेक्टर आनंद पटेल ने विश्वास व्यक्त किया कि ब्रेल लिपि के माध्यम से प्रशिक्षण उपलब्ध कराने का यह प्रयास आपदा की स्थिति में दिव्यांगजनों के लिए जीवन रक्षक सिद्ध होगा।
पिछले कुछ दिनों से सिविल डिफेंस की ऑफिस के माध्यम से नागरिकों को तालीम दी जा रही है। ये जो सिटीजन को ट्रेनिंग दी जा रही है इसमें प्रथम बार ये हुआ है कि ब्रेल लिपि के माध्यम से भी लोकल लेवल पे जो साहित्य है उसको मटेरियल को तैयार किया गया है क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी विपरीत परिस्थितियों में जो हमारे सीनियर सिटीजन होते हैं बच्चे होते हैं और दिव्यांगजन होते हैं वो सबसे वल्नरेबल सेक्शन हमारी सोसाइटी का रहा है तो इनको भी हम लोग ट्रेन करना चाहते हैं जिससे कि डिजास्टर की कोई भी परिस्थितियां हो या वो नेचुरल डिजास्टर हो या मैन मेड डिजास्टर हो तो ऐसी परिस्थितियों में एज ए सिटीजन एज ए फैमिली मेंबर वो लोग रिस्पॉन्ड कर पाए।
मंडल के सचिव और स्पेशल एजुकेटर हिमांशु सोमपुरा जो कि खुद भी दिव्यांग है और इस मॉड्यूल को ब्रेल लिपि में तैयार किया है आकाशवाणी समाचार से बातचीत करते हुए बताया कि किसी भी आपात परिस्थिति में दिव्यांगजन खुद का और अपने आसपास के लोगों का बचाव करते हुए राष्ट्र के लिए अपना योगदान दे पाए यह इस प्रशिक्षण का उद्देश्य है।
इमरजेंसी सिचुएशन में सबसे ज्यादा जो वल्नरेबल ग्रुप है वो पर्सन विद डिसेबिलिटी होते हैं वो लोग अपना स्वयं बचाव कर सके और अगर सिचुएशन डिमांड करे तो कुछ लोगों को या अपने परिवार जनों को भी मदद कर सके आपातकालीन स्थिति में उस उद्देश्य से ये ट्रेनिंग दिया गया है। इस ट्रेनिंग की खास बात यह है कि वे पूरा इंक्लूसिव फॉर्मेट में ट्रेनिंग दी गई है। जो भी मॉड्यूल्स थे चाहे वो फायर सेफ्टी के थे फर्स्ट एड के थे एम्बुलेंस सर्विसेज के थे या और भी कुछ थे वो सारे ब्रेल में ट्रांसक्राइब करके दिए गए थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम जब लोग दिव्यांग जन लोग जब हक पूरा मांगते हैं सभी जगह पे इक्वालिटी की बात करते हैं तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग ऐसी सिचुएशन में सोसाइटी और नेशन को समर्पित हो सके।
यह ब्रेल लिपि नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण मॉड्यूल अनुवादित होने के बाद गुजरात राज्य के स्तर पर और देश के अन्य सभी राज्यों में रहने वाले दिव्यांगों के लिए भी उपयोगी होगा, जिसके चलते अब देश के करीब 50 लाख नेत्रहीनों को आपातकालीन राहत और बचाव का प्रशिक्षण प्रदान करना संभव हो पाएगा। परिक्रमा के लिए भूज से अशरफ नथवाणी।
श्रोताओं, अब चलते हैं खेल के मैदान की ओर और वहां की हलचल लेते हैं। सबसे पहले बात खेलो इंडिया यूथ गेम्स की। नई दिल्ली के डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में चल रही निशानेबाजी प्रतियोगिता में महाराष्ट्र के पार्थ राकेश माने और शंभवी श्रवण क्षीरसागर ने 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम युवा वर्ग स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। इन खेलों में शंभवी ने ये दूसरा स्वर्ण पदक जीता है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में शंभवी ने प्रतियोगिता को कठिन बताया। उन्होंने कहा कि उनके कोच के मार्गदर्शन ने उनकी जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
मैंने आज 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम में गोल्ड लिया विद पार्थ माने और हम दोनों का क्वालिफिकेशन बहुत अच्छा हुआ। वी स्कोर 634.9 और फाइनल्स में भी हमने बहुत अच्छा किया। खेलो इंडिया सपोर्टिंग अस विद फंड्स एंड फिजियो कोचेस एंड ऑल।
द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया बीसीसीआई हैज अनाउंस्ड द इमीडिएट सस्पेंशन ऑफ द रिमेंडर ऑफ द ऑनगोइंग आईपीएल 2025 सीजन फॉर वन वीक। This decision comes in response to escalating military tensions between India and Pakistan, particularly following recent cross-border hostilities in the Kashmir region. In a statement issued today afternoon, the BCCI stated that updates regarding the revised schedule and venues will be provided after a comprehensive assessment of the situation in consultation with relevant authorities and stakeholders. The decision was made by the IPL Governing Council after thorough discussions with key stakeholders, including franchise representatives. And now news from the business world. The benchmark domestic equity indices today ended 1.1% down amid escalating geopolitical tensions between India and Pakistan. The 30-share index at the Bombay Stock Exchange Sensex shed 880 points to close at 79,454. The National Stock Exchange Nifty 50 lost 266 points to settle at 24,008. In the global crude market, Brent crude was trading over 1.7%, up at $63.95 per barrel, and WTI crude was trading 1.9%, up at $61.05 per barrel when reports last came in. In the Indian bullion market, 24-carat gold was trading down at 96,460 rupees per 10 grams, and silver 999 fine was also trading down at 96,410 rupees per kilogram when reports last came in. Now we will take you on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
In today's episode, we remember eminent freedom fighter Gopal Krishna Gokhale, who was born on the 9th of May, 1866. A moderate political leader and a social reformer, Gokhale was a senior leader of the Indian National Congress and the founder of the Servants of India Society.
Gokhale was famously a mentor to Mahatma Gandhi. Gandhiji recognized Gokhale as an admirable leader and master politician, describing him as pure as crystal, gentle as a lamb, brave as a lion, and chivalrous to a fault, and the most perfect man in the political field. Recalling his first meeting with Gokhale in Pune on October the 12th, 1896, Gandhiji wrote,
I met Gokhale. I found him on the Ferguson College grounds. Gopal Krishna Gokhale gave me an affectionate welcome, and his manner immediately won my heart. With him, this was my first meeting, and yet it seemed as though we were renewing an old friendship. Sir Firoz Shah had seemed to me like the Himalaya, the Lokmanya like the ocean, but Gokhale was as the Ganges. One could have a refreshing bath in the holy river. The Himalaya was unscalable, and one could not easily launch forth on the sea. But the Ganges invited one to its bosom. It was a joy to be on it with a boat and an oar. Gokhale closely examined me As a schoolmaster would examine a candidate seeking admission to a school, he told me whom to approach and how to approach them. He asked to have a look at my speech. He assured me that he was always at my disposal and sent me away exultantly happy. In the sphere of politics, the place that Gokhale occupied in my heart during his lifetime and occupies even now was and is absolutely unique.
Gopal Krishna Gokhale died on the 19th of February 1915. We salute this great nationalist.
We also remember activist for Indians in South Africa, Bhavani Dayal Sanyasi, who died on the 9th of May 1950. He was the editor of various India-related newsletters such as The Pravasi and collaborated with Mahatma Gandhi and represented the South African Indians at the Indian National Congress. He was also active in the Arya Samaj.
Bhavani Dayal came from a family that had moved from Arra district, Bihar, as indentured labourers to South Africa. His parents, Babu Jairam Singh and Mohini Devi, became free citizens in 1884 and settled in Johannesburg, where Dayal was born. Dayal joined Gandhiji in the passive resistant movement of 1913. In 1919, he represented the South African Indians at the Amritsar session of the Indian National Congress.
Dayal founded a journal called Hindi and protested a British plan in 1921 to repatriate Indians to British Guyana. Dayal founded a Pravasi Bhavan in his home village at Bahuara, Bihar, with a library and school in 1926-27. In 1930, he took part in the Salt Satyagraha in India, and on March 29th, he was booked for seditious speeches, including those delivered by him in Fiji. In 1932, he went back to South Africa.
Bhavani Dayal continued to work for the betterment of people till his death in 1950. We salute the great patriot.
We remember independence activists Narayan Murmu, Baju Murmu, and Baidyanath Tudu, who were arrested on the 9th of May 1943 for taking part in the Quit India movement. The three were residents of village Dumaria, Santhal Parganas, Jharkhand, and also took part in the Lathi Pahad agitation. They died during their internment. We salute the great martyr.
श्रोताओं, कार्यक्रम परिक्रमा में अब समय है उन खास व्यक्तित्व को याद करने का जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिवस है. अभिषेक, आज सबसे पहले किन्हें याद कर रहे हैं?
We start off with Rabindranath Tagore, who was born on this day, composer of India's national anthem, Janagana Mana. Tagore was a polymath who bridged cultures through his works. Born in 1861, he played a leading role in Indian cultural renaissance and came to be recognized as one of the architects of modern India, alongside Mahatma Gandhi. A Bengali from Calcutta with ancestral gentry roots in Bardhaman district and Jessore, he was a poet, playwright, composer, philosopher, and short story writer. Rabindranath Tagore was awarded the Nobel Prize for Literature in 1913. Rabindranath Tagore was born in Kolkata, was a Bengali poet, short story writer, song composer, playwright, essayist, and painter, who introduced new prose and verse forms and the use of colloquial language into Bengali literature, thereby freeing it from traditional models based on classical Sanskrit. He was highly influential in introducing Indian culture to the West and vice versa, and he is generally regarded as the outstanding creative artist of early 20th century India. In 1913, he became the first non-European to receive the Nobel Prize for Literature. The son of the religious reformer Devendranath Tagore, he early began to write verses, and after incomplete studies in England in the late 1870s, he returned to India. There he published several books of poetry in the 1880s and completed Manasi in 1890, a collection that marks the maturing of his genius, and it contains some of his best-known poems. Tagore's poems are virtually untranslatable, as are his more than 2,000 songs, which achieved considerable popularity among all classes of Bengali society. In 1901, Tagore founded an experimental school in rural West Bengal at Shantiniketan, a board of peace, where he sought to blend the best in the Indian and Western traditions. He settled permanently at the school, which became Vishwa Bharati University in 1921. His book Gitanjali, Song of Offerings, won him the Nobel Prize in 1913. Tagore's novels in Bengali are less well known than his poems and short stories. They include Gora, Ghore Baire, translated into English as Gora and the Home and the World, respectively. In the late 1920s, when he was in his 60s, Tagore took up painting and produced works that won him a place among India's foremost contemporary artists. And today, Prime Minister Narendra Modi paid tribute to Rabindranath Tagore on his birth anniversary. In a social media post, Mr. Modi said that Tagore is fondly remembered for shaping the country's literary and cultural heritage. The Prime Minister noted that his works emphasized humanism while also igniting a strong sense of nationalism among the people. Mr. Modi said Tagore's contributions to education and learning, particularly through the nurturing of Shantiniketan, continue to serve as a source of great inspiration.
आज कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी की भी पुण्यतिथि है. ये हिंदी के जाने माने निबंधकार थे जिन्होंने राजनीतिक और सामाजिक जीवन से संबंध रखने वाले अनेक निबंध लिखे. ज्ञानोदय पत्रिका का संपादन भी कन्हैया लाल जी ने किया. इनकी अब तक 7 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं. आकाश के तारे, धरती के फूल, प्रभाकर जी की लघु कहानियों के संग्रह का शीर्षक है. जिंदगी मुस्कुराई तथा बाजे पायलिया के घुंघरू नामक संग्रह में उनके छोटे प्रेरणादायी ललित निबंध संग्रहित हैं.
Tenzing Norgay passed away on this day in 1986, born Namgyal Wangdi and also referred to as Sherpa Tenzing. He was a Nepalese-Indian Sherpa mountaineer. On 29 May 1953, he and Edmund Hillary were the first confirmed to have reached the summit of Mount Everest as part of the 1953 British Mount Everest expedition. Time named Norgay one of the 100 most influential people of the 20th century. And also Jackie Keith Whitley passed away on this day in 1989. He was an American country music and bluegrass singer and songwriter. And during his career, he released only 2 albums, but charted 12 singles on the Billboard country charts and 7 more after his death. Let's listen in to his hit track, Brotherly Love, and it's from the album Kentucky Bluebird.
We share the same last name and the same color eyes, but we fought like tigers over that old red bike. I'm bad.
आज तलत महमूद जी की पुण्यतिथि है. ये भारतीय पार्श्व गायक थे जिन्हें भारतीय फिल्मों के लोकप्रिय गीत और गजल गायकों में से एक माना जाता है. मुंबई में प्रदर्शित फिल्म राखी अनमोल से इनके करियर को विशेष पहचान मिली और तलत और दिलीप कुमार का अनूठा संयोग देखने को मिला. गजल ए दिल मुझे ऐसी जगह ले चल, इन्होंने 17 भारतीय भाषाओं में गाने गाए और अभिनेता दिलीप कुमार पर फिल्माया गया उनका गाना मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का बहुत सराहा गया. आइए सुनते हैं आज के मौके पर उनके गाए कुछ गजल और गीत.
तुझे हुआ क्या है आखिर इस दर्द की दवा क्या है.
Yes, and Maharana Pratap was a renowned Rajput ruler whose name is synonymous with bravery. His defiance of Akbar as well as the bravery of his loyal horse Chitak are well known. He was born on this day when others recognized Akbar's supremacy. Maharana Pratap stood firm against the Mughal Empire. Every year, Rajasthan celebrates the birth anniversary of Maharana Pratap with great fanfare and opulence.
आज भावराव पाटिल जी की भी पुण्यतिथि है. भावराव रयात एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक थे. ये महाराष्ट्र के सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षक थे. भावराव का सिद्धांत था अर्न एंड लर्न, यानी कमाओ और सीखो. इनके कार्य के लिए इन्हें 1959 में पद्मभूषण से सम्मानित किया गया.
Yes, and William Martin Joel was born on this day in 1949. He's an American singer, songwriter and pianist, nicknamed the Piano Man after his signature 1973 song of the same name. Joel has had a successful career as a solo artist since the 1970s. Let's listen in to the song.
There's an old man sitting next to me, making love to his tonic and gin.
श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का. इजाजत दीजिए सरफिरोजी और अभिषेक मुखोपाध्याय को कार्यक्रम परिक्रमा यहीं समाप्त करने की. नमस्कार, नमस्कार।